तो भगवत गीता का तीसरा अध्याय अब अपने अंतिम चरण में है, जहां भगवान काम वासना का जो प्रकोप है बद्ध जीवात्मा के ऊपर, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पिछले बुधवार हमने जो एक महत्वपूर्ण श्लोक इस श्रृंखला का लिया, तस्मात्त्वम् इंद्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि हीनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। यहां भगवान अब एक सुझाव दे रहे हैं अर्जुन को कि जो कामवासना ने अपने निवास स्थान निर्धारित कर लिए हैं, हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि, तो यदि इन निवास स्थानों के ऊपर हमें काम वासना का प्रकोप पूर्ण रूपेण मिटाना है तो सर्वप्रथम इंद्रियों से शुरू करना है। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणाद्यो, आदि है इंद्रियां। और भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। नियम्य भरतर्षभ प्रजही, प्रजही का अर्थ हमने समझा था दमन करना, नियम के द्वारा अपनी इंद्रियों का दमन करना। तो श्रील प्रभुपाद ने जो रोड साइन देखा था एक समय, हमने इस रोड साइन को लेकर जो पिछला श्लोक है उसको समझने की कोशिश की थी। टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि नियम पालन करते समय अर्जुन यदि आप लोग ने अनाउंसमेंट सुना है तो दो डोनेशन बॉक्स हैं। ये सेलफोन है, टेम्पररी कन्वीनियंस फॉर परमानेंट इनकन्वीनियंस। कि हमारे टेम्पररी कन्वीनियंस के लिए हम पूरे सभा को परमानेंटली इनकन्वीनियंट कर देते। तो ये श्लोक जहां पर ऋषभदेव वही सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि यदि हमें अनंत काल तक, यहां पर अनंत लास्ट शब्द क्या है, अनंत, अनंत काल तक यदि हमें सुखी होना है, सौख्यम तु अनंतम, अनंत काल तक यदि सुखी होना है, और कौन सा सुख, ब्रह्म सुख, तो अनंत काल तक यदि हमें ब्रह्म सुख प्राप्त करना है तो शुद्ध होना होगा। शुद्धे, हम उल्टा समझ रहे हैं श्लोक को तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि उल्टी चलती ज्यादा। तो यदि अनंत काल तक हमें ब्रह्म सुख प्राप्त करना है तो ऋषभदेव कहते हैं शुद्धेत, शुद्ध होना होगा। शुद्ध होने के लिए सत्वम, सत्वगुण में अपने आप को स्थित करना होगा, और ऐसी शुद्धता और सत्वगुण अपने जीवन में लाने के लिए दिव्य तप करना होगा। कष्ट नहीं, दिव्य तप, क्योंकि वो कहते हैं कि कष्ट तो जानवर भी कर रहे हैं, एक सुअर भी कर रहा है, और बिना कष्ट के उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो क्यों सुअरों की तरह कष्ट कर रहे हो। विड़भुजाम, विड़भुजाम का अर्थ है जो विष्ठा खाने वाले प्राणी हैं, क्यों उनकी तरह कष्ट करना, दिव्य तप करो। तो ये भी वही सिद्धांत को दर्शा रहा है, टेम्पररी इनकन्वीनियंस, क्योंकि उस तप करने में भी असुविधा होगी, कष्ट होगा, डिस्कम्फर्ट, परंतु अंत में क्या प्राप्त होने वाला है? अनंत ब्रह्म सुख। और भगवान ने ये जो महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया पिछले श्लोक में, पापमानम प्रजही हीनम, और श्रील प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं, लस्ट इज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ सिन। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से इसका अनुवाद किया, और हमने हमारे पिछले सेटिंग में इस ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ सिन को मॉडर्न व्यू से देखने की कोशिश की कि आजकल के लोग इस पापमानम या इस काम शत्रु को किस प्रकार से देखते हैं। इट इज द सिंबल ऑफ ग्लैमर, कि उसके वजह से उनको प्रगत माना जाता है, कि जितनी काम वासना आपके जीवन में विस्तार से आप दिखा पाओ उतने ग्लैमरस आप कहलाए जाओगे। तो अब भगवान ने इसके पश्चात आज का जो श्लोक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है पिछले श्लोक की तरह। आप कहते होंगे प्रभु जी हर बार यही कहते हैं, क्यों कहते हैं हर बार? क्योंकि हर श्लोक महत्वपूर्ण है। ये है भगवद गीता की खूबी कि भगवान भगवद गीता के हर एक श्लोक के अंदर इतना तत्व ज्ञान भर भर कर दिए हैं कि हर एक श्लोक अगर हम मिस कर दें तो यार मिस्ड आउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का श्लोक क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है इसलिए दो भागों में हम लेंगे, पार्ट वन आज का और फिर अगले बुधवार को पार्ट टू। इंद्रियाणि पराण्याहोर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहोर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहोर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। बहुत सरल है इस श्लोक को समझना। भगवान यहां पर पराणी परम परा ये सारे जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इसका अर्थ है इससे ऊंचा ये है उससे ऊंचा वो है। इस प्रकार से तीन लेवल्स बता रहे हैं हमारे इस शरीर के संदर्भ में। तो इसका पूरा अनुवाद इस प्रकार से है, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों इन तीनों से भी बढ़कर है। तो यहां भगवान हो सकता है कोई ये प्रश्न पूछे कि इस श्लोक में भगवान ने केवल इंफॉर्मेशन दिया है किसी चीज का, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ पंचिंग पावरफुल श्लोक है जिसके अंदर भगवान काम वासना काम शत्रु का कैसे दमन किया जाए दहन किया जाए उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। भगवान खाली इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई हमारे शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा। It seems that the shloka is simply informing us about the three or four levels within our existence. नहीं, क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं वो भगवान के मनोभाव को समझकर ये तथाकथित इंफॉर्मेटिव श्लोक में से हमको गूढ़ सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए हैं। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से संबंध, पराणी शब्द की व्याख्या। आज के श्लोक द्वारा भगवान ने तरतम्य न्याय से तीन स्तर पर मनुष्य शरीर की रचना समझाई। आज के श्लोक पर श्रीपाद वल्लभाचार्य की टीका। आज के श्लोक का पतंजलि एवं नारद भक्ति सूत्रों से संबंध, और ये हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। आज के श्लोक में काम शत्रु की तुलना हमारे आचार्यों ने दुर्योधन से की है। मन के अनियंत्रित होने के 8 कारण, घबराइए मत, ये अगले वेडनेसडे का टॉपिक से। अर्जुन के मन की व्याख्या पर भगवान का कथन, स्थूल की तुलना में सूक्ष्म की शक्ति अधिक होती है कैसे समझें, और आज के श्लोक की जो विशेष व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने की है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, बहुत ही सूक्ष्म और विशेष संबंध है आज के श्लोक का पिछले श्लोक से। तो पिछले श्लोक में काम शत्रु पर विजय की विधि भगवान ने योगियों के लिए दी, और आज के श्लोक में काम शत्रु पर विजय की विधि भगवान भक्तों के लिए दी। कैसे? इसके लिए हमें अगले सिटिंग में जब हम वो लास्ट मुद्दा उसकी चर्चा करेंगे, श्रील प्रभुपाद की विशेष व्याख्या, तब समझ में आएगा। तो मैं आज इसलिए नहीं बता रहा उसको ताकि आप अगले बुधवार को भी आइए। अब प्राणी, ये शब्द भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं पहली लाइन, इंद्रियाणि प्राण्याः। तो प्राणी ये जो शब्द है संस्कृत का, श्रील प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया है सुपीरियर, श्रेष्ठ। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार हमारे आचार्यों ने प्राणी शब्द के अलग अलग अर्थ बताए हैं, और अलग अलग तरीके से उसको संदर्भ के अनुसार समझाया, कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग के अनुसार समझाया। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, प्राणी शब्द पर शब्द का बहुवचन है। जैसे व्याकरण में होता है सिंगुलर और प्लूरल, तो पर यह संस्कृत का एक शब्द है जो कि सिंगुलर, और प्राणी हो गया प्लूरल या बहुवचन। अब वो आगे कहते हैं कि प्राणी शब्द के 3 अर्थ हैं, पर, परव और प्राणी। तो एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो अब आपके सामने अगर एक छोटा सा टेस्ट रखें हम कि क्यों भगवान ने पहली लाइन में, मैं लाइन रिपीट करता हूं, इंद्रियाणि प्राण्याः, क्यों भगवान ने पहली लाइन में प्राणी शब्द इस्तेमाल किया? हाँ, क्योंकि इंद्रियां बहुत हैं तो इसलिए बहुवचन, इसलिए भगवान ने बहुवचन इस्तेमाल किया। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि प्राणी शब्द के 3 अर्थ जो कि संस्कृत के कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग से उन्होंने निकालकर बताए, तो ये 3 अर्थ इस प्रकार से हैं। वो कहते हैं प्राणी शब्द का अर्थ एक होता है पराया। प्राणी शब्द का एक और दूसरा अर्थ होता है विरोधी, और तीसरा अर्थ है बलवान। तो यहां पर वो कहते हैं कि भगवान इस प्राणी शब्द का इस्तेमाल करते हुए काम शत्रु के विषय में बोल रहे हैं कि काम शत्रु जब इंद्रिय स्तर पर रहता है और उससे ऊपर जब मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर तक पहुंचता है तो उसका जो प्रकोप है, उसका जो बल है, उसके अंदर जो परायापन है, विरोधाभास है, बढ़ता रहता है। थोड़ा टेक्निकल है ये, भगवान तरतम्य न्याय इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझाएंगे क्या है। रविवार को भी हम उसकी चर्चा कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि भगवान यहां पर काम शत्रु के तीन लक्षण बता रहे हैं कि ये तीन लक्षण है काम शत्रु के, यदि हम पहचाने तो। सबसे पहले ये काम शत्रु पराया है, ये किसी का सगा नहीं है। बोलते ना, वो किसी के सगे नहीं होते, जो भी, तो ये किसी का सगा नहीं है, पराया है। एक राधानाथ महाराज का बहुत सुंदर प्रवचन बहुत साल पहले मैं सुन रहा था। उस प्रवचन का शीर्षक था, वी आर स्ट्रेंजर्स इन अ फॉरेन लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्ट्रेंजर्स एंड दैट टू इन अ फॉरेन लैंड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, कि ये हमारा घर नहीं है, हम यहां पर भाड़ोत्री हैं, भाड़ोत्री, और माया देवी को भर रहे हैं भाड़ा हर जन्म में। तो महाराज उस प्रवचन में कह रहे थे कि हम जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो सबसे पहले इस पराए फॉरेन लैंड भौतिक संसार को हम अपना घर बनाना चाहते हैं। तो उस पूरे प्रवचन का सारांश यही था कि हम जितने योनियों में जितने अथक प्रयास कर रहे हैं, हमारा जो भी प्रयास चल रहा है अलग अलग योनियों में इस भौतिक संसार में, वो यही चल रहा है कि ये न केन प्रकारेण हम इस भाड़े के मकान को खरीद लें, कि हम इस भाड़े के मकान को अपना बना लें। वी आर ट्राइंग टू बिकम ओनर्स, ऑल्दो वी आर परमानेंट टेनेंट्स हियर। नित्यबद्ध मतलब परमानेंट टेनेंट्स। और फिर हम कर क्या रहे हैं, केवल इतना ही नहीं, जो इस संसार के पराये हैं उनको हम अपना मान रहे हैं। तो यहां पर जो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि काम वासना जो कि पराणी पराया, लेकिन उसको हमने अपना माना है कि अरे इसके बिना तो मैं कैसे जीवन जीऊंगा। जैसे होता ना, घर परिवार वाले कहते हैं कि तुम्हारे बिना कैसे मैं जीवन जीऊंगा। तो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि वही हम काम वासना के विषय में बोलते रहते हैं कि तुम्हारे बिना तो सांस भी नहीं ले सकता मैं। तो जो शत्रु है, शत्रु का लक्षण क्या होना चाहिए कि सबसे पहले शत्रु पराया होना चाहिए। अगर हम केवल बोलते रहेंगे कि हाँ ये शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है, लेकिन उसको घर में बिठा के हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको पराया नहीं समझ रहे, तो लक्षणों से समझ में आएगा कि वो शत्रु है कि नहीं। तो भगवान यहां पर लक्षण बता रहे हैं, या बलदेव विद्याभूषण भगवान का मनोभाव दर्शाते हुए हम बताते हैं कि सबसे पहले ये जान लेना कि इंद्रियां हमारी पराई हैं, नहीं है हमारे, नहीं है ये, ये मन, ये बुद्धि, ये सब भौतिक प्रकृति ने हमको भाड़े पर दिया है यूज करने के लिए। क्यों इस प्रकार की इंद्रियां दी हैं, क्यों इस प्रकार का मन और बुद्धि दी है, ताकि हम यहां पर इस भ्रम में रहें कि हम नियन्ना है, भगवान है। और इसलिए विरोधी और बलवान, ये शत्रु के लक्षण हैं कि हर समय शत्रु हमसे विरोध करता रहता है, और शत्रु के अंदर अगर बल है तभी वो शत्रु हम उसको मानेंगे। अभी जैसे कोई चींटी है, अगर कोई चींटी हमारे सामने आ जाए तो हम उसको शत्रु नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर बल नहीं दिख रहा है। हाँ, जब वो काटना शुरू करती है तब हाँ उसका बल दिखता है, समझ में नहीं आता कि कहां काट के चली गई। तो कई चींटियां होती है ना जो काटती नहीं, वो लाल वाली काटती है, दूसरी पता नहीं काटती नहीं। तो चींटियों से हम को शत्रुता नहीं हो सकती क्योंकि बल नहीं दिख रहा है। परंतु यहां पर बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि ये जो काम है, ये काम शत्रु बलवान है, हर समय विरोध, क्या विरोध कर रहा है ये काम शत्रु। हम अगर प्रयास भी करना चाहें कि भगवान की भक्ति मैं करना चाहता हूं, काम शत्रु को जाकर हाथ जोड़ के बोले मुझे भगवान की भक्ति करने दो, नहीं, कदापि नहीं, हिम्मत तुम्हारी, मेरे होते हुए, मेरे जीते जी तुम ये भगवान कृष्ण की भक्ति करो। तो विरोध, बल से विरोध करता है और दिखाता ऐसा है कि मैं ही तुम्हारा शुभचिंतक हूं। काम दिखाता ऐसा है कि वो शुभचिंतक है हमारा, परंतु हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि वो पराया हर समय रहने वाला है। इसलिए विश्वास मत रखना। भगवान वो पराणी शब्द से अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, जिसके ऊपर इस काम शत्रु ने अपना साम्राज्य बना लिया है, इन तीनों के ऊपर तुम विश्वास मत रखना, क्योंकि ये तुम्हारे पराये हैं, ये हर समय विरोध करेंगे और ये बल के द्वारा तुम्हें हर समय अपने अधीन रखेंगे। तो ये है पराणी शब्द की व्याख्या। अब भगवान ने जो तरतम्य न्याय से हमारे शरीर के ये जो तीन स्तर बताए, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारे रविवार के क्लास में नहीं थे उनको समझा दे, तरतम्य न्याय क्या होता है। तर और तम्य संस्कृत का एक न्याय है, बेटर बेस्ट। अर्थात हमारी वैदिक संस्कृति में हर चीज को लेवल के थ्रू समझाया जाता है। और आप देखिए कि उसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर भी हमारे जो अंग हैं या अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं जो शरीर के अंदर चल रही हैं, उसके लेवल्स हैं, और लेवल्स के अनुसार हमको उनसे डील करना होता है। हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। तो तरतम्य न्याय हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो हमने सीखा, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, तो भगवान इस तरतम्य न्याय के द्वारा, या हम इंग्लिश ग्रामर जो सीखे उसके द्वारा यदि समझने की कोशिश करें, तो भगवान बता रहे हैं आज हमारी इंद्रियां, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि। तो क्यों ये श्रेणियां बताई गई है, क्यों ये लेवल्स बताए गए हैं? क्योंकि हम बिना गीता पढ़े भी हमारे शरीर के अंदर लेवल्स के अनुसार हमारे शरीर के अंगों के साथ डील करते हैं। अब देखिए कि हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, हम कितना उनके ऊपर गौर करते हैं, कितना उनके ऊपर खर्चा करते हैं। हाँ, अगर हम यही लें, कलयुग में खर्चे की भाषा हम अच्छे से समझते हैं, तो अगर हम खर्चा लें तो हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, ये आंख, नाक, कान, त्वक इंद्रिय इत्यादि, तो हम इनके ऊपर कितना खर्चा करते हैं, और इनके अलावा शरीर के जो बाकी अंग हैं जो हमें डायरेक्ट एंजॉयमेंट नहीं देते उनके ऊपर बाकी पांच इंद्रियों की तुलना में उनके ऊपर खर्चा कभी तो होता ही नहीं है, या अगर वो बीमार हुए तब खर्चा करते हैं। आगे इसकी चर्चा हम करेंगे कि क्यों ये जो श्रेणियां भगवान बताए हैं इसका महत्व क्या है। तो अब भगवान ने तरतम्य न्याय से सबसे पहले कहा इंद्रियाणि पराण्याहोर, अर्थात वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर। जैसे यहां पर कुर्सियों पर आप बैठे हो तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो कुर्सियां हैं ये डल मैटर है। तो अब कुर्सियों के ऊपर जो बैठा है उसके ऊपर हम महत्व देंगे ना। मैं प्रवचन किसको दे रहा हूं? कोई कहे कि अरे आपने आज कुर्सियों को कितना अच्छा प्रवचन दिया, हिली भी नहीं, कई बार ऊपर बैठे भी नहीं हिलते। तो क्यों महत्व दिया जा रहा है कि कुर्सियों के ऊपर जो आप लोग बैठे हो, बिकॉज यू हु आर पोजेसिंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर। फिर भगवान आगे बोल रहे हैं इंद्रियेभ्य परम मनः, माइंड इज हायर देन सेंसेस। अच्छा अब इंद्रियों के द्वारा, अब जैसे मैं आपकी इंद्रियों कुछ इंद्रियों को देख पा रहा हूं, आपकी आंखें आपका चेहरा इत्यादि, तो अब यदि मैं ये कहूं कि भाई आपकी आंखें तो हैं मिल रही है मुझसे, आई कांटेक्ट हो रहा है कि हाँ, कई बार आप देखो कि कुछ पॉइंट्स होते हैं अगर आपको समझ में आते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आए, और कई बार मुझे समझ में आता है कि पूरा ओवरहेड ट्रांसमिशन था। परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आपके मन से आप एकाग्रचित हो कि नहीं। अभी आंखों से आप देख रहे होगे स्लाइड को, मेरे को इधर उधर देख रहे हो, परंतु मुझे पता नहीं आपका मन कहां देख रहा है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये इंद्रियों से ऊपर है मन जो कि ज्यादा सूक्ष्म है। हम उसकी चर्चा अगली बार करने वाले हैं कि जो जितना सूक्ष्म होता है वैदिक संस्कृति के अनुसार उतना शक्तिशाली होता है, जो जितना स्थूल होता है, द मोर समथिंग इज ग्रोस द लेस पावरफुल इट इज, द मोर समथिंग इज सटल द मोर पावरफुल। फिर आगे भगवान ने कहा मनसस्तु पराबुद्धि, इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड। अब जो बुद्धि, जैसे मान लीजिए यही उदाहरण हम आगे इसको बढ़ाएं कि ये प्रवचन आप सुन रहे हो, आपके कानों से आपके जो ईयर ड्रम्स है, ईयर होल्स है, वहां से वाणी अंदर जा रही है, और फिर आपके अंदर जो मन और बुद्धि है, तो मन जो है वो अगर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, कॉन्सेंट्रेशन का जो फीचर है वो मन का है, और समझने का फीचर है इंटेलिजेंस का। तो कई बार आप कॉन्सेंट्रेशन करने का ट्राई करते हो, कानों में जा रहा है तरतम्य न्याय, क्या बोल दिया ये, नहीं समझ में। कॉन्सेंट्रेट अगर बराबर नहीं हुआ है तो इंटेलिजेंस फिर वहां से इंटेलिजेंस रिजेक्ट कर देगा, नहीं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया, अभी अगला लाइन चालू हो गया, अभी भूल जाओ उसको, अगली बार कैसेट में सुन लेना क्या था। तो यहां पर भगवान बता रहे कि इंटेलिजेंस जो है वो सुपीरियर है माइंड से। तो हम एक एक का कारण लेंगे कि क्यों एक दूसरे से श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले हमारी इंद्रियां, तो श्रील प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेट किया है श्लोक को, सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी, वो जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है। क्यों? सबसे पहले पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, पतंजलि मुनि ने, कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों में प्रकृति ने एक प्लेजर कोट किया हुआ है। जैसे होता ना, कोट करते ना, पेंट का कोट करते हैं, या दवाइयों के ऊपर देखो कई बार शुगर कोटेड पिल्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे इंद्रियों के ऊपर प्लेजर कोट है। श्रीमद् भागवत में भी इस बात की पुष्टि हुई है, विशेष रूप से सेक्स लाइफ के विषय में बताया गया है कि शुरुआत में जब प्रजापतियों ने, भगवान ने प्रजापतियों को कहा कि वृद्धि करो, किसकी पॉपुलेशन, इसकी वृद्धि करो, तो कैसे? थ्रू सेक्स लाइफ। लेकिन इतना मिजरेबल था सेक्स लाइफ कि सब लोगों को वो बहुत बड़ा कष्ट लगता था, तब फिर ब्रह्मा जी ने उसके अंदर प्लेजर कोड डाला और फिर लोग पागल हो गए आज तक। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे अभी एक जीभ को लें, तो अब ये जीभ है क्या? अगर आप इसको एनालाइज करने जाओ तो ये भी एक बिना हड्डी का मांस का टुकड़ा अंदर 2 इंच का लपलपाता रहता है, लेकिन यहां वहां कितना भगाता है देखो लोग, इति उति धाए। ये इतना बड़ा शिप हमारा जो है ना, इसका ये रडर है, रडर अंदर दिखाई नहीं, रडर भी दिखाई नहीं देता, वो पूरे इतने बड़े शिप को लेफ्ट टर्न राइट टर्न कराता रहता है। तो वैसे ही ये इतना बड़ा जो हमारा शिप है, ये अंदर का रडर घुमाता रहता है, चलो अभी गंगापुर रोड, चलो इधर किनारा होटल, चलो चलो इधर लेफ्ट राइट। तो इसके ऊपर ये क्यों, क्यों ये मांस का टुकड़ा इतना सा अंदर हमारे मुंह के अंदर क्यों इतना खर्चा करवाता है? क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट बड्स डाल दिए, है ना, प्लेजर कोट। तो अब देखिए, श्रील प्रभुपाद ने एक कथा सुनाई थी कि हमको पहले प्लेजर मिलता है कि हम इस जीवा के द्वारा खाते रहें, खा ले इतना खा ले, और फिर शरीर ऐसा बनाया है कि ये जीवा जब अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, राधानाथ महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि जीवा को कोई पड़ी नहीं कि पेट को तकलीफ हो रही है, जीवा बोलती मेरे को तो आनंद मिल रहा है ना, मेरे को क्या मतलब है, तेरा गोदाम भरा खाली रहा, मुझे तो आनंद मिल रहा है। तो जीवा तो चखती जाती जो भी कुछ ये वो, और पेट वो भूलते जा रहा है, वो उसको परेशान हो रही है, गैस ये वो सब कुछ, पेट अंदर से चिल्ला रहा, अरे बंद कर। अच्छा उतना ही नहीं, फिर जो भी इतना गोदाम भर दिया, फिर अब उसको खाली करना। तो अब हमारे शरीर को इस प्रकार से बनाया है कि जब कोई इतना खाने के पश्चात उसको दूसरे दिन विसर्जित करता है, उसमें भी उसको आनंद आता है। ये शरीर, और अगर वो नहीं विसर्जित कर पाए तब हालत देखो। कोई अगर इसमें शंका कर रहा है कि अरे कैसे, उसमें कैसे आनंद, हाँ तो नहीं हो पाए। मुझे याद है हम लोग ट्रेनिंग में थे, तो ट्रेनिंग में हमारा सब टाइम टू टाइम, हमको केवल सुबह शौचालय में जाने के लिए इतना टाइम मिलता था, बस इतने टाइम में जो भी शौच कर लो, जितना होता है निकलो बाहर। तो हमें याद था हमारे वो डॉर्मेटरी टाइप था वो बैरेक्स, कॉमन टॉयलेट्स वगैरह, तो सब लाइन लगी रहती थी बाहर। तो मुझे याद है एक बार एक मेरे बैचमेट का, वो अंदर गाने गा रहा था और मुझे बाद में समझ में आया कि वो गाना वो प्रसन्नता से नहीं गा रहा था बेचारा, बोल रहा था मेरे सपनों का राजा कब आएगा तू, ये गाना गा रहा था। बीती जाए जिंदगी कब आएगा तू, फिर जोर से चिल्लाए चला आ तू चला। अब पता नहीं उसके सपनों का राजा आया कि नहीं। तो यहां पर जो प्लेजर कोर्ट, प्रकृति ने हमारी इंद्रियों के ऊपर वो प्लेजर कोट डाल रखा है, इसलिए डल मैटर से सुपीरियर। और दूसरा कारण, इन इंद्रियों के अंदर शक्ति है कि वो हमारे चित्त के ऊपर वृत्ति जमा सके, हमारे कॉन्शियसनेस माइंड, माइंड के ऊपर इंप्रेशंस आ सके। जैसे कि अब हमारे मन के अंदर जो भी विचारधारा चलती है, हमारे इच्छाएं इत्यादि, तो वो सब इच्छाएं कहां से पैदा होती, जब इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में, जब इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं, और जब इंद्रिय भोग होता है तो एक इंप्रेशन माइंड के ऊपर वो लोग छोड़ के जाते, और फिर वो इंप्रेशन धीरे धीरे मन जो है पैदा करता रहता है कि हाँ चलो तुमने 10 साल पहले जो कोन आइसक्रीम खाया था, तो उसका जो इंप्रेशन, फिर मन 10 साल बाद वापस याद दिलाता है कि मुझे वो इंप्रेशन याद आ रहा है और मुझे वापस से वो इंप्रेशन का सुख अनुभव करना है, तो ढूंढो कहां पर है कोन आइसक्रीम। तो इंद्रियां फिर भागती, जीभ फिर भागती। तो ये मन के ऊपर इंप्रेशंस डालने की शक्ति इंद्रियों के अंदर, डल मैटर में नहीं। इसलिए ये जो इंद्रियां हैं, जीव गोस्वामी वो भागवत की टीका में एक प्रश्न पूछते हैं कि विष और विषय में ज्यादा शक्तिशाली कौन है, विष मतलब पॉइजन, विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स। वो कहते हैं विषय, विषय ज्यादा शक्तिशाली है, और क्यों वो हम देखेंगे मन के संदर्भ में। तब मन क्यों इंद्रियों से ज्यादा श्रेष्ठ है, जो आप भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों को अपने आप को संतुष्ट करने के लिए विषय वस्तु चाहिए सामने। अब जैसे मान लो कि जीभ है और एक रसगुल्ला है, तो जीभ कब संतुष्ट होगी, जब वो रसगुल्ला उस जीभ के संपर्क में आएगा, है ना। अब आप देखिए कि अक्सर हम जब किसी विषय वस्तु को देखते हैं, हमारी इंद्रियां जब संपर्क में आती हैं, आंखें इत्यादि जो भी, तब उस समय वो लालायित होती हैं। परंतु मन क्या है कि अगर इंद्रिय सामने भी नहीं है, कोसों दूर है अपनी विषय वस्तु, कोसों दूर है, परंतु मन उसको उसका भोग कर सकता है। माइंड डजंट नीड द सेंस ऑब्जेक्ट फिजिकली इन फ्रंट, माइंड कैन एंजॉय सेंस ऑब्जेक्ट्स without the sense objects being physically present, just by contemplating on the sense objects. तो जीव गोस्वामी का ये जो प्रश्न, कि विष और विषय में ज्यादा शक्तिशाली, तो वो कहते हैं कि विषय, क्योंकि विषय को अनुभव, जैसे विष किसी को जब कोई लेता है शारीरिक रूप से तभी मारता है, परंतु विषय को कोई फिजिकली उसके साथ संपर्क में भी ना आए, केवल उसके ऊपर ध्यान करने से, और ध्यान कैसे होगा, मन के द्वारा। तो ये पहला कारण। दूसरा कारण, माइंड एनी टाइम लीव सेंसेस विदाउट नोटिस। ये मन जो है वो इंद्रियों पर निर्भर नहीं रहता है या इंद्रियों के अधीन नहीं रहता है। जैसे कि इस समय इंद्रियां हमारी यहां पर बैठी हैं, और अगर इंद्रियां मन को बोले, आंखें देख रही हैं प्रोजेक्टर या अपने स्क्रीन को, कान जो हैं वो सुन रहे हैं स्पीकर के द्वारा, कान और आंख हमारे मन को कहे कि अरे थोड़ा ध्यान दो, मदद करो मेरी, नहीं, मन मौजी बोलते ना, मन मौजी, मन बोलता है मैं बोर हो रहा है, तू देखते रहे उसको, तू स्क्रीन को देखते रहे, आंखों को बोलता है मन, तू स्क्रीन को देखते रहे, कानों को बोलता है तू सुनते रहे खोल के अच्छी से, मैं अपना घूम के आता हूं। तो ये जो मन है ये इंद्रियां उसको पकड़कर एक जगह पर बिना नोटिस के भाग जाता है, और इंद्रियां बोलती है अरे तुम्हारे संतुष्टि के लिए तो हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, मन बोलता है मूड नहीं है, मूड नहीं है मेरा। और ये बताने की भी कर्टसी नहीं रखता वो मन, बिना बताए भाग जाता है इधर उधर। और हमारी इंद्रियां कई बार होता है ना, जप के समय हम लोग शुरू करते हैं 5:45 बजे हरे कृष्णा ऐसे माला के ऊपर कर रहे हैं, तो सारी हमारी इंद्रियां लगी हुई हैं, कर्म इंद्रियां लगी हुई हैं, उंगलियां भी लगी हुई हैं, जीवा लगी हुई है, कान भी लगना चाहिए, सब कुछ लगे हुए हैं वहां पे। और हम 5:45 बजे हमारी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिय को लगाया जप के अंदर, 6 बजे पता लगा तो गायब हो गया, मन तो गायब हो गया, कहां गया पता ही नहीं कहां गया, अपन यान्ना पायलट का। फिर बाद में हम ढूंढते रहते। तो ये दूसरा कारण है कि वो इंद्रियों के अधीन नहीं रहता, इंडिपेंडेंट रहता। अब इंटेलिजेंस क्यों सुपीरियर है माइंड से, बहुत सुंदर इसकी टीका उन्होंने की है हमारे बलदेव विद्याभूषण ने। सबसे पहले बुद्धि का सही इस्तेमाल यदि कोई करे तो बुद्धि के अंदर इतनी शक्ति है जिसको कहते हैं विवेक बुद्धि, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि मन जितना भी बोलता रहे कि ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे लिए बुरा है, बुद्धि जो है वो बताती है कि क्या पूरे आत्मा के लिए अच्छा है, क्या पूरे तुम्हारे अस्तित्व के लिए अच्छा बुरा है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंटेलिजेंस हैज। जैसे कि मान लो यदि मैं पूछूं शिवांग, यदि मैं शिवांग हमारे यहां के भक्त शिवांग को पूछूं कि शिवांग अभी इस समय तुमको यदि गद्दा तकिया रजाई दे यहां पे, सोने का मन करेगा? ये तुरंत नहीं क्यों बोले, बुद्धि ने बोला है नहीं। यही प्रश्न इनके घर जाकर जब रात के 11 बजे इनको पूछा जाएगा तो नहीं नहीं बोलेगा, अभी नहीं क्यों बोला इसने, ये मन ने नहीं नहीं बोला, जब ये प्रस्ताव रखा गया तो मन नाचने लगा, अरे वाह वाह मन हरिबोल हरिबोल करने लगा, तुरंत बुद्धि ने डिस्क्रिमिनेट किया, पागल है सबके सामने। रजाई गद्दा सबके सामने यहां पे सोएगा, शर्म नहीं आती तुरंत। तो ये है शक्ति बुद्धि की। अभी आपने देखा एग्जैक्ट, तुरंत स्पॉन्टेनियसली जो इन्होंने मना किया वो इनकी बुद्धि ने मना किया, क्योंकि बुद्धि ने बोला ये समय नहीं है, ये जगह नहीं है, चुप रहो, मना कर, सीधा अपनी इज्जत बचानी है, मना कर। तो कितना टाइम लगा, वो बुद्धि ने तुरंत सिग्नल्स भेजे वो नर्वस सिस्टम में, तुरंत जीवा को बोला ना ना बोल ना। तो जीवा उस प्रकार से हिली। तो इसलिए यहां पर बताया है कि ये जो बुद्धि, अगर इसी इसी प्रकार की बुद्धि को हम हर समय इस्तेमाल करते रहें तो बुद्धि हर समय हमको सही गाइडेंस देती रहेगी कि कहां ना बोलना है, कहां हां बोलना है। इसलिए पावरफुल है। और दूसरा कारण बहुत सुंदर हमारे आचार्य कहते हैं कि यहां भगवान बुद्धि के संदर्भ में पराबुद्धिर कहे हैं। तो पर और परा, पर और परा में अंतर है। पर हो गया मैस्कुलिन और परा फेमिनिन। जैसे कि होते हैं ना राम रमा, राम एक मैस्कुलिन नाम हो गया और रमा हो गया फेमिनिन। तो वैसे ही पर और परा। तो क्यों भगवान यहां पर बुद्धि को एक स्त्रीलिंग रूप में बोल रहे हैं, फेमिनाइन, क्यों स्त्रीलिंग ये व्याकरण इस्तेमाल किया जा रहा है? बलदेव विद्याभूषण बहुत सुंदर कहते हैं क्योंकि जब तक बुद्धि को हम राधा रानी उनके चरण कमलों पर नहीं लगाते, अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की, तब तक ये बुद्धि के अंदर शक्ति नहीं आएगी मन को नियंत्रित करने की। अनलेस एंड अंटिल दिस इंटेलिजेंस टेक शेल्टर ऑफ द फेमिनाइन फीचर ऑफ कृष्णा विच इज राधा रानी, इट कैनॉट हैव द पावर टू कंट्रोल द माइंड। तो बलदेव विद्याभूषण बहुत ही रसिक कॉमेंट्री दे रहे हैं यहां पर। वो कहते हैं कि कृष्णा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यूजिंग द वर्ड परा वॉज रिमेंबरिंग राधा रानी ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो अगर कोई पूछे कि भगवद गीता में राधा रानी को भगवान ने कहां याद किया है, तो इस श्लोक में आप कोट कर सकते हैं परा बुद्धि, जैसे अपरा परा शक्तियां जो होती हैं भगवान की। तो इसलिए सुपीरियर है ये हमारी बुद्धि, क्योंकि इसको लाइसेंस मिला है डायरेक्टली राधा रानी की शरणागत होने का। अब श्रीपाद वल्लभाचार्य इन्होंने आज के श्लोक के ऊपर जो टीका की है, बहुत ही विशेष टीका है इनकी, और इस टीका को समझने के लिए हमें हमारी बुद्धि को थोड़ा और मन को एकाग्र कर समझना होगा। तो आप लोग आ जाइए वापस कमरे में, मन को बोल रहा हूं। तो सबसे पहले वल्लभाचार्य जो पूरा भागवत ग्रंथ है उसमें जो 10 विषय, अत्र सर्ग विसर्ग पोषणम उतय निरोध इत्यादि, तो वो बताते हैं कि जो 10 विषय हैं, 10 सब्जेक्ट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतय, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से दिया गया है। भागवत में क्रिएशन के विषय में बताया है, सब क्रिएशन के विषय में बताया है, कॉस्मिक प्रोटेक्शन, पोषणम का अर्थ है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, उतय का अर्थ है क्रिएटिव इम्पेटस, और आगे के जो और 5 विषय हैं, मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, मन्वंतर changes of manos, ishanu katha, signs of God, nirodh, destruction, mukti, liberation, ashraya, going back to Godhead. तो ये 10 subject matters वल्लभाचार्य, हालांकि ये श्लोक है भागवत के अंदर, तो वो इसको ले रहे हैं, ये 10 subject matters. अब इस पे वो फोकस डाल रहे हैं जो 8th विषय वस्तु है. 8th टॉपिक कौन सा है? निरोध, जिसका वो ट्रांसलेशन करते हैं डिस्ट्रक्शन. तो आप इस वर्ड को ध्यान में रखना, हम इस वर्ड पर फिर से आएंगे वापस, निरोध. तो वल्लभाचार्य के अनुसार 10th कैंटो भागवत का जो दशम स्कंद है उसको उन्होंने कहा है कि वो है निरोध, दशम स्कंद. अब आपको लग रहा होगा कि दशम स्कंद डिस्ट्रक्शन, वो तो इतनी मधुर लीलाएं भगवान की, उसके अंदर डिस्ट्रक्शन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेशन है वल्लभाचार्य का. तो इसको हम समझने की कोशिश करें. तो वो अब निरोध शब्द को लेते हैं, और पतंजलि मुनि, उन्होंने जो पतंजलि सूत्रों में, जो पतंजलि सूत्रों का दूसरा सूत्र है उसके अंदर पतंजलि मुनि कहते हैं कि योग सूत्र में यदि योग की परिभाषा पूछी जाए तो योग की परिभाषा ये है, चित्त वृत्ति निरोध. यह है योग की परिभाषा. तो यहां पर भी पतंजलि मुनि ने निरोध शब्द इस्तेमाल किया, परंतु उससे पहले उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, चित्त वृत्ति. तो चित्त वृत्ति का अर्थ क्या है? चित्त वृत्ति पतंजलि मुनि के अनुसार पास्ट इंप्रेशंस, हमारे मन के अंदर जो पास्ट इंप्रेशंस हैं. तो पतंजलि मुनि और वल्लभाचार्य ये जो तरतम्य न्याय के अनुसार हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि है, इसमें मन को बहुत ज्यादा फोकस करते हुए महत्व दे रहे हैं, जिसको चित्त बताया इन्होंने, क्योंकि वहां से वो मन जो है इंद्रियों को बोलता रहता, अब ये करो, ये देखो, ये खाओ, ये सुनो, पास्ट इंप्रेशंस की वजह से. तो पतंजलि मुनि कहते हैं पास्ट इंप्रेशंस कॉजेस प्रेजेंट डिस्ट्रैक्शंस. जैसे अभी भी हम लोग अगर प्रयास कर रहे हैं सुनने का, समझने का, मुश्किल हो रहा है अपने आप को फोकस करना. क्यों? क्योंकि पास्ट इंप्रेशंस बार 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 बार, इतने जन्मों के अलग अलग हमारी जो चित्तवृत्ति है वो बीच बीच में आती रहती है और हम फोकस नहीं कर पाते. अच्छा 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 निरोध, अच्छा 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 चित्त वृत्ति, तरतम्य न्याय, ये सब. तो ये सब पास्ट डिस्ट्रैक्शंस, पास्ट इंप्रेशंस की वजह से प्रेजेंट डिस्ट्रैक्शन होता है. तो पतंजलि मुनि कह रहे, तो अब चित्त वृत्ति का अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, चित्त वृत्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, चित्त वृत्ति मींस इट हैज द वेपन्स ऑफ मास, नॉट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्शन. इंग्लिश में एक फ्रेज है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. तो पतंजलि मुनि के अनुसार चित्त वृत्ति मतलब इट हैज द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन. बस उतना ही काफी है हमको हमारे आध्यात्मिक पथ से भ्रष्ट करना. उनको कोई बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, केवल डिस्ट्रैक्ट करते रहो, डिस्ट्रैक्ट करते रहो बस. एंड दीज आर द मोस्ट पावरफुल वेपन्स यूज्ड बाय माया देवी, चित्त वृत्ति, डिस्ट्रैक्शन. जैसे कि अगर एक मुझे कार्टून मेरे एक मित्र ने भेजा था, कलयुग का उपवास। तो कलयुग का उपवास अगर हम इतना भी कर लें, न्यू टाइप ऑफ उपवास, लिविंग वन डे विदाउट मोबाइल व्हीकल फेसबुक इंटरनेट पीसी लैपटॉप, पीस ऑफ माइंड। अब देखिए, पहले उपवास किया जाता था, क्यों? ताकि उपवास में हम ये सारी चीजें ना खाएं, अन्न ना खाएं इत्यादि, और बाकी बहुत सारी चीजें ना करें। क्यों? ताकि फिर मन शांत रहता। परंतु कलयुग में हम कितना भी निर्जल करते रहें, लेकिन ये सारी जो चीजें हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मौजूद हैं, और ये इस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे फेसबुक है ना, फेसबुक, ये फेसबुक के विषय में ये बताया गया है कि फेसबुक एंड प्रिजन हाउस, जेल एक समान है, बिकॉज इन बोथ केसेस पीपल सिट डू नथिंग राइट ऑन वॉल्स। कोई बात नहीं, कल समझ लेना। एक बार एक पति वो इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच देख रहा था, इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच लास्ट ओवर, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर, लास्ट बॉल, 6 रन चाहिए खाली, 6 रन चाहिए लास्ट बॉल इंडिया को जीतने के लिए। सोचो क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। उसी समय उसकी पत्नी एक नई साड़ी पहनकर आती और वो पूछती है, ए जी सुनो मैं कैसी लग रही हूं, जोर से ताली मार के छक्का। उस रात उसका फ्यूनरल हो गया। तो प्रश्न है कि कौन किसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो टीवी देख रहा है उसके लिए ये डिस्ट्रैक्शन है, इसने जो अच्छी नई साड़ी पहन के आई उसके लिए ये डिस्ट्रैक्शन, और दोनों डिस्ट्रक्शन बन जाते फिर एक दूसरे के। सो मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि मुनि जो दूसरे योग सूत्र में बोल रहे हैं कि योग की परिभाषा ये है, क्या है चित्त वृत्ति निरोध का कंप्लीट ट्रांसलेशन क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव माइंड। पूरा ट्रांसलेशन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव माइंड, ये है चित्त वृत्ति निरोध पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। तो अब हम चित्त वृत्ति निरोध या डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव माइंड जो पतंजलि मुनि ने कहा है, और वल्लभाचार्य ने जो 10 विषय वस्तु बताया उसके अंदर से 8वां कौन सा था? निरोध। तो वो कहते हैं वो निरोध है हियरिंग 10th कैंटो। और मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि ये कार्तिक का महीना जो प्रारंभ हुआ है, जिसके अंदर भगवान की ये मनोहर लीला जो कि दशम स्कंद में है, तो जितना हम दशम स्कंद को सुनेंगे, वल्लभाचार्य बोलते हैं क्या होगा, निरोध के वजह से चित्त वृत्ति निरोध होगा। द वेपन अगेंस्ट द वेपन ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज हियरिंग 10th कैंटो, व्हाट टू स्पीक हियरिंग इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको? पतंजलि मुनि के चित्त वृत्ति निरोध, वल्लभाचार्य की इस उत्प्रेक्षा से। तो वल्लभाचार्य इन्होंने जो लास्ट के 3 टॉपिक्स अगर हम लें, जिसके अंदर इन्होंने निरोध, मुक्ति और आश्रय इसके विषय में बताया, तो निरोध तो हम समझ गए, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? कृष्णाज पास टाइम्स इन 10th कैंटो विल डिस्ट्रॉय अवर डिस्ट्रैक्टिव माइंड। देखो क्या सोच के उन्होंने निरोध का ट्रांसलेशन डिस्ट्रक्शन किया, दैट व्हेन वी हियर 10th कैंटो दैट विल डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रैक्टिव माइंड एंड देन विल बी अब्सॉर्ब्ड। तो उसके बाद फिर मुक्ति की कोई आशा रहेगी जब इस प्रकार का श्रवण हम करेंगे, और उसके पश्चात आश्रय, आश्रय मतलब गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड। आपको अगर याद है आश्रय मतलब गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, तो वो बता रहे हैं कि जब हम भगवान का आश्रय प्राप्त करेंगे भगवत धाम जाकर, तब जाकर हम फियरलेस हो पाएंगे। अभी इस भौतिक संसार में भय या फियर या डर किसका है कि ये मन हर समय हमको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। सो वी कैन बिकम फियरलेस ओनली व्हेन वी रीच द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड टू रीच द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी हैव टू बी अब्सॉर्ब्ड नाउ हियर, and to be absorbed we have to destroy the destructive mind. तो ये ऐसा connection है, और इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो आज के श्लोक में भगवान तरतम्य न्याय से इंद्रिय मन और बुद्धि की व्याख्या कर रहे हैं, उसके अंदर वो focus कर रहे हैं मन के ऊपर। हरे कृष्णा। अब नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में भी जो वल्लभाचार्य ने टीका की है और जो पतंजलि मुनि ने, उनका निचोड़ नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र में किया। तो नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि वो कहते हैं कि दशम स्कंद जब हम उसका श्रवण करते हैं तो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले मत्ता भवती, फिर स्तंभम भवती, और तीसरी आत्माराम भवती। तो इन तीनों का ट्रांसलेशन इस प्रकार से, मत्ता भवती अर्थात एजिटेशन, स्तंभम भवती अर्थात एब्जॉर्प्शन, आत्माराम भवती अर्थात इंडिपेंडेंस। घबराइए मत, मैं समझाता हूं इसको। कि दशम स्कंद सुनने से, श्रवण करने से, सबसे पहले दशम स्कंद भगवान की जो वृंदावन द्वारका इत्यादि की जो लीला है वो हमारे मन में एजिटेशंस पैदा करती। मत्ता भवती, फर्स्ट स्टेज क्या है? एजिटेशन। किस प्रकार का एजिटेशन? कि जो मन अब तक काम वासना में रत, काम वासना के विषय में सोचता रहता है, तो भगवान कृष्ण की दशम स्कंद की लीला उसके अंदर उपद्रव पैदा करती है। इसलिए देखिए, जब हम हमारा ये जो कामुक मन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करता है तो उसे पसंद नहीं आता है, वो उसको बहुत एजिटेशन होता है। क्या एजिटेशन होता है? कि अरे ये परम भोक्ता कैसे? क्योंकि दशम स्कंद में क्या बताया गया है? श्याम सुंदर कृष्ण परम भोक्ता हैं, और हमारा मन जो है उसको स्वीकृति देता ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है। देवामृत महाराज श्रील प्रभुपाद के शिष्य वो कहते हैं कि उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय कृष्णा बुक, हमारा इस्कॉन का जो है, वो एक व्यक्ति को दिखाया और उस कृष्णा बुक पे लिखा है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो उसे वो बहुत, उसको अपमानित लगा, ये कौन हो सकता है सुप्रीम पर्सनालिटी। फिर उसने खोला, कृष्णा द सुप्रीम एंजॉयर अंदर लिखा हुआ था, तो उसने बुक को बंद कर कर पटक कर गया, हाउ कैन समवन एल्स बी द सुप्रीम एंजॉयर अदर देन मी। इसको बोलते हैं, अब कृष्णा बुक है क्या, दशम स्कंद, एग्जैक्टली एजिटेशन, कि दशम स्कंद को जब हमारा कामुक मन, व्हेन द लस्टी माइंड लिसन्स टू द 10th कैंटो, इट फर्स्ट गेट्स एजिटेटेड, एंड दैट इज सपोज टू हैपन अकॉर्डिंग टू नारद भक्ति सूत्र। अगर दशम स्कंद सुनने के बाद हमारे अंदर एजिटेशन नहीं हो रहा है तो समझ में आना चाहिए कि गाड़ी सही पटरी पे नहीं है, क्योंकि अब हिला हिला के हमारे काम वासनाओं को बाहर निकालने वाला है दशम स्कंद। इसलिए बाहर निकालने के लिए पहले एजिटेट करता है, एजिटेट, तो उसको नारद मुनि कहते हैं मत्ता भवती। और फिर जाकर सेकेंड स्टेज में एब्सॉर्प्शन, फिर वो एजिटेशन के बाद में एब्सॉर्प्शन, और फिर फाइनल स्टेज नारद मुनि कहते हैं इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस क्या है, आत्माराम। आत्माराम भवती मतलब अब उसे इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना पड़ता, अब उसे भौतिक मन के वशीभूत नहीं होना पड़ता या बुद्धि के वशीभूत नहीं होना पड़ता। देन दैट पर्सन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ मटीरियल डिजायर। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि ये जो स्टेज है टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ वन सेंसेस एंड मटेरियल डिजायर्स, दैट इज द रियल मुक्ति एंड फ्रीडम। वो सबसे बड़ा फ्रीडम या स्वतंत्रता है। हम लोग चाहे कितना भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता मना लें, नारद मुनि के अनुसार जब तक हम हमारी भौतिक काम वासनाओं से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं, और स्वतंत्र हम हमारी भौतिक काम वासनाओं से कैसे होंगे, जब हम आत्माराम स्थिति में पहुंचेंगे। आत्माराम का अर्थ है कि वो भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति में जो कि आत्मा करता है उसी में आनंद लेता है, तो वो है आत्माराम भवती। और नारद मुनि अपने नारद भक्ति सूत्र में एक उदाहरण देकर समझाते हैं। बहुत विशेष उदाहरण है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। वो उदाहरण देते हैं शिशुपाल का। वो कहते हैं कि शिशुपाल वो पैदा होते ही भगवान कृष्ण के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। हम जानते हैं शिशुपाल, उसने जो सेंचुरी मारी थी 100 बार गालियां देके जब खत्म हुआ वो, तो नारद मुनि शिशुपाल से प्रेरणा ले रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कि मेरे अंदर यदि इतनी तीव्रता आए भगवान कृष्ण के ऊपर फोकस करने की, जितनी तीव्रता शिशुपाल के अंदर थी कि वो एक सेकंड भी चूकता नहीं था भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं सोचने से, परंतु उसकी भावना क्या थी, द्वेष। तो द्वेष के कारण शिशुपाल हर क्षण भगवान के बारे में सोचता रहता। तो नारद मुनि प्रेरणा द्वेष से नहीं ले रहे हैं, उसके एब्जॉर्प्शन से ले रहे हैं कि एक क्षण भी वो नहीं छोड़ रहा था। तो फिर वो कहते हैं कि ये जो तीन स्टेजेस हैं, मत्ता भवती, स्तंभम भवती, आत्माराम भवती, और जो वल्लभाचार्य ने कहा कि दशम स्कंद सुनने से, तो नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि भी यही बात की व्याख्या कर। अच्छा, अब अंत में जो नारद मुनि ने कहा हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे 5-10 मिनट, कि नारद मुनि शिशुपाल का उदाहरण क्यों ले रहे हैं। नारद मुनि शिशुपाल का उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि इस भौतिक संसार में आप देखो नेगेटिविटी जो है नेगेटिविटी हमें ज्यादा फोकस्ड बनाती, एनवी मेक्स अस थिंक ऑफ द अदर पर्सन मोर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड कंपेयर टू लव. और इसलिए मैं इसके विषय में सोच रहा था कि आप देखो इस भौतिक संसार में, मुझे एक मेरे मित्र लंदन के वो बता रहे थे, वो बीबीसी में काम करते हैं, तो वो बोल रहे थे कि आप अगर मीडिया को लो तो मीडिया में सबसे ज्यादा हिट्स कौन से न्यूज के होते हैं, नेगेटिव न्यूज. तो उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि एक पेपर है, पेपर न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को आप खोलो, एक ही पेज में एक ही कॉलम में न्यूज है कि एक दंपति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, और उसके बगल में न्यूज है बलात्कार का. वो कहते हैं कि 99.9% लोग वो बलात्कार का न्यूज जो है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और खाली 0.1% जो हैं वो जो कोई हैप्पी न्यूज कुछ होगा उसको पढ़ेंगे. सो दिस इज दी कलयुगा मेंटालिटी कि हमारा एब्जॉर्प्शन और फोकस नेगेटिविटी के बलबूते पर ज्यादा रहता. तो अभी मैं हाल ही में एक मुझे कई भक्तों ने ये एक लेटेस्ट कोलगेट का एड आया है, डेंटल फ्लॉस. डेंटल फ्लॉस जानते हैं, वो जो दांतों को साफ करने के लिए नए नए तरीके. तो इसका एक एड है तो हम आपको दिखाना चाहेंगे. पवन गौरंग क्या दिख रहा है आपको इस एड में? हाँ, मियां बीवी दांत दिखा रहे हैं, लेकिन क्या दोनों के दांतों में से क्या समझ में आ रहा है? काला है ना. इनके दांतों में क्या दिख रहा है? काला है ना. इनके दांतों में क्या दिख रहा है? तो तीनों पिक्चर्स में क्या आपको समझ में आया कि जो हस्बैंड था उसके दांत में प्रॉब्लम ना? अब देखो इन्होंने कितना इंटेलिजेंटली ये एड डिजाइन किया है. उन्होंने कहा कि इस एड को अगर ये तीनों पिक्चर्स को आप वापस ध्यान से देखोगे तो वो जो छोटा सा यहां पर दांत के अंदर कचरा या कालापन दिख रहा है वो तो कुछ भी नहीं था. अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, सबसे मेजर डिफेक्ट क्या है उस पति के अंदर? उसका एक कान नहीं है, देखा आपने? अभी दिखा आपको है ना, लेकिन आपका फोकस किधर गया? हाँ, अब इसके पहले वाला फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा. इसके अंदर वो जो हाथ रखा है ना उनकी पत्नी ने, उसकी उंगलियां काउंट काउंट करो कितनी है, कितनी उंगलियां है ना, वो किसी है ना डायन की लगती है ऐसे. तो आपका फोकस उधर नहीं गया है ना. अब इसके अंदर देखिए, वो जो उसके कंधे पर हाथ आ रहा है वो पता नहीं किसका हाथ है ना. ऑब्वियसली उस पत्नी का तो हाथ नहीं होगा. तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये तीनों इमेजेस में, उनका कैप्शन इस प्रकार से था, वो तो ये बोलते हैं डेंटल प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज सो सिग्निफिकेंट that even major discrepancies in the body is overlooked. Therefore, take care of your teeth by using Colgate dental floss. सोचो उसको बेचने के लिए कितना दिमाग लगाया उन्होंने. तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं ये बताने के लिए जो नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कह रहे हैं। फिर से आ जाइए नारद भक्ति सूत्र में। तो नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि बोलते हैं दैट इन दिस मटीरियल वर्ल्ड नेगेटिविटी कीप्स अस मोर फोकस्ड देन पॉजिटिविटी एंड फॉर दैट नेगेटिविटी टू गो अवे नारद मुनि वल्लभाचार्य दे आर सेइंग वी शुड लिसन टू 10th कैंटो ऑफ द श्रीमद भागवतम बाय लिसनिंग टू कृष्ण कथा फ्रॉम द दशम स्कंद ऑल दीज नेगेटिविटीज विल गो अवे विच विल एजिटेट अस फर्स्ट जो हमारे अंदर उपद्रव पैदा करेंगे और उसके पश्चात फिर एकाग्रता और उस एकाग्रता के बलबूते पर हम आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर पाएंगे चित्त वृत्ति निरोध जो पतंजलि मुनि के है। और ये है हमारे ये जो आज का श्लोक हमने लिया इसका भाग पहला और अब अगले बुधवार को इसका भाग दो इसकी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय श्री प्रभुपाद की।